नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जोसेफ ए
शुम्पिटर की यह पुस्तक राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक प्रभावशाली कृति कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी
के उस केंद्रीय हिस्से का सुलभ संस्करण है जिसमें वे पूछते हैं कि क्या पूंजीवाद टिक सकता है।
इसका उद्देश्य पूंजीवाद की प्रशंसा या निंदा भर करना नहीं, बल्कि उसकी गतिशीलता और उसके भीतर पैदा होने वाले सामाजिक तनावों को समझना है।
शुम्पिटर का सबसे प्रसिद्ध विचार रचनात्मक विनाश बताता है कि आर्थिक प्रगति नई वस्तुओं तकनीकों बाजारों और संगठनात्मक रूपों के माध्यम से पुराने उद्योगों कौशलों और व्यावसायिक ढांचों को हटाती चलती है। वे पूंजीवाद को स्थिर संतुलन नहीं निरंतर परिवर्तन की विकासवादी प्रक्रिया मानते हैं। फिर भी उनका निष्कर्ष आशावादी नहीं है।
उनके अनुसार पूंजीवाद अपनी आर्थिक विफलता से कम अपनी सफलता से अधिक कमजोर हो सकता है, क्योंकि बड़े संगठन
बौद्धिक वर्ग और बदलती राजनीतिक संस्थाएं उद्यमी पूंजीवाद के सामाजिक आधार को क्षीण कर सकती हैं। यह संस्करण नवाचार प्रतिस्पर्धा निगमों और समाजवाद पर शुम्पिटर की चुनौतीपूर्ण दृष्टि का संक्षिप्त प्रवेश द्वार है।
मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले रचनात्मक विनाश पूंजीवाद की स्थायी गति का सिद्धांत। शुम्पिटर के विचार में पूंजीवाद का मूल तथ्य मूल्य प्रतिस्पर्धा या मौजूदा संसाधनों का कुशल वितरण मात्र नहीं है। इसकी केंद्रीय शक्ति वह प्रक्रिया है जिसमें नए उपभोक्ता उत्पाद उत्पादन विधियां बाजार आपूर्ति स्रोत और व्यावसायिक संगठन पुराने ढांचों को विस्थापित करते हैं। इसी को वे रचनात्मक विनाश कहते हैं। निर्माण और विनाश यहाँ अलग घटनाएं नहीं है। नई रेल नई मशीन नया संचार माध्यम या नया संगठन तभी व्यापक प्रभाव डालता है जब वह पुराने निवेश कौशल प्रतिष्ठानों और आदतों का मूल्य घटाता है।
इसलिए परिवर्तन से होने वाली हानि कोई आकस्मिक अपवाद नहीं, बल्कि नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था का अंग है।
शुम्पिटर का जोर दीर्घकालीन गतिशील प्रतिस्पर्धा पर है। किसी उद्योग की वर्तमान स्थिति देखकर प्रतिस्पर्धा का आकलन अधूरा रहेगा, क्योंकि भविष्य का नव प्रवेशी या नई तकनीक स्थापित कंपनियों की शक्ति को चुनौती दे सकती है। यह दृष्टि बताती है कि आर्थिक विकास को केवल स्थिर कीमतों तत्काल दक्षता या किसी एक बाजार की संरचना से नहीं समझा जा सकता। साथ ही यह विचार परिवर्तन की सामाजिक लागत को अदृश्य नहीं करता। रोजगार स्थानीय समुदाय और विशेष कौशल प्रभावित होते हैं। अतः रचनात्मक विनाश प्रगति का सरल उत्सव नहीं, लाभ और विस्थापन साथ साथ चलने की व्याख्या है।
दूसरा, उद्यमी आविष्कार को आर्थिक नवाचार में बदलता है। पुस्तक में उद्यमी की भूमिका केवल व्यवसाय चलाने वाले व्यक्ति की नहीं है।
शुम्पिटर आविष्कार और नवाचार के बीच महत्वपूर्ण अंतर रखते हैं। कोई वैज्ञानिक खोज या तकनीकी विचार तब तक आर्थिक परिवर्तन नहीं बनता जब तक कोई उसे उत्पादन वितरण नए उत्पाद नए बाजार या संगठनात्मक प्रयोग के रूप में लागू करने का जोखिम नहीं लेता। यह अनुप्रयोग उद्यमी का कार्य है।
इसलिए पूंजीवादी विकास का स्रोत केवल पूंजी संचय या नियमित प्रबंधन नहीं, बल्कि नए संयोजनों को व्यवहार में उतारने की क्षमता है।
उद्यमी स्थापित दिनचर्या को तोड़ता है, अनिश्चित मांग का सामना करता है और संसाधनों को नई दिशा देता है। सफल नवाचार अस्थायी लाभ दे सकता है, लेकिन उसकी नकल प्रतिस्पर्धा और आगे के नवाचार उस लाभ को स्थायी नहीं रहने देते।
इस क्रम में आर्थिक गतिविधि तरंगों और पुनर्गठन के रूप में आगे बढ़ती है।
शुम्पिटर का विश्लेषण इसीलिए उस धारणा से अलग है जिसमें प्रतिस्पर्धा केवल बहुत सी छोटी फर्मों के एक जैसी वस्तुएं बेचने का नाम है।
उनके लिए असली प्रतिस्पर्धा अक्सर नई गुणवत्ता नई तकनीक और नए संगठन से आती है।
आज भी यह भेद उपयोगी है, क्योंकि किसी नई तकनीक का सामाजिक मूल्य उसके अस्तित्व में नहीं, बल्कि उसके व्यापक और प्रभावी उपयोग में प्रकट होता है।
तीसरा, बड़े निगम और यंत्रीकृत नवाचार उद्यमिता की प्रकृति बदलते हैं। शुम्पिटर बड़े निगमों को केवल पूंजीवाद विरोधी शक्ति के रूप में नहीं देखते।
उनका तर्क है कि आधुनिक उद्योग में अनुसंधान उत्पादन वित्त और वितरण की जटिलता के कारण बड़े संगठन नवाचार को योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं।
इस अर्थ में विशाल फर्में तकनीकी प्रगति की क्षमता बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन इसी संभावना में उनकी चिंता छिपी है। जब नवाचार व्यक्तिगत साहस निजी निर्णय और नए उद्यम की जगह विशेषज्ञों विभागों और नियमित प्रशासन की प्रक्रिया बनता जाता है, तब उद्यमी की विशिष्ट सामाजिक भूमिका कमजोर पड़ सकती है।
प्रगति स्वयं अधिक यंत्रीकृत और नौकरशाहीपूर्ण हो सकती है।
यह दावा नहीं कि हर बड़ा निगम नवाचार को रोकता है, नहीं यह कि छोटे उद्यम हमेशा अधिक सृजनशील होते हैं।
मुद्दा यह है कि पूंजीवादी व्यवस्था की सफलता उसके मूल सांस्कृतिक आधार को बदल देती है।
जब जोखिम लेना असाधारण कार्य के बजाय संगठित प्रबंधन का नियमित हिस्सा बन जाए, तब पूंजीवाद को वैधता देने वाली उद्यमी छवि फीकी पड़ सकती है।
इस विश्लेषण से बाजार संरचना पर एक सूक्ष्म पाठ मिलता है। आकार, प्रतिस्पर्धा और नवाचार का संबंध सीधा नहीं है।
किसी व्यवस्था का मूल्यांकन करते समय यह देखना जरूरी है कि वह नए प्रयोगों को संभव बनाती है या उन्हें प्रशासनिक सुविधा और स्थापित हितों के अधीन कर देती है।
चौथा, पूंजीवाद के अंत की भविष्यवाणी आर्थिक पतन नहीं, सामाजिक शरण है। पुस्तक का उत्तेजक प्रश्न, क्या पूंजीवाद जीवित रह सकता है?
शुम्पिटर को यह उत्तर देने तक ले जाता है कि शायद नहीं, लेकिन उनका तर्क साधारण मंदी, संसाधन क्षय या अनिवार्य बाजार विफलता पर आधारित नहीं है। वे कहते हैं कि पूंजीवाद अपनी सफलताओं के कारण ऐसे सामाजिक और राजनीतिक हालात पैदा कर सकता है जो उसकी रक्षा करने वाली संस्थाओं को कमजोर करें।
आर्थिक प्रगति बड़े संगठनों, पेशेवर प्रबंधकों और आलोचनात्मक बौद्धिक वर्गों का विस्तार कर सकती है। संपत्ति, उद्यम और लाभ के प्रति नैतिक समर्थन घट सकता है, जबकि हस्तक्षेप और नियोजन की मांग बढ़ सकती है।
शुम्पिटर की दृष्टि में बौद्धिक आलोचना अपने आप में अवैध नहीं है, बल्कि समस्या यह है कि पूंजीवाद जिन स्वतंत्रताओं और शिक्षा का विस्तार करता है, वही उसके विरुद्ध वैचारिक असंतोष को भी स्थान देती है।
इसीलिए उनकी भविष्यवाणी मार्क्स से मिलती जुलती लगते हुए भी अलग है। वे पूंजीवाद के टूटने को केवल वर्ग संघर्ष का यांत्रिक परिणाम नहीं मानते, यह संस्थागत, सांस्कृतिक और राजनीतिक बदलावों की सशर्त प्रक्रिया है।
बाद के इतिहास ने समाजवाद की अनिवार्य विजय को सिद्ध नहीं किया, फिर भी शुम्पिटर का प्रश्न प्रासंगिक है।
कोई आर्थिक व्यवस्था उत्पादक होने पर भी सार्वजनिक वैधता, संस्थागत संतुलन और सामाजिक समर्थन खो सकती है। अंत में लोकतंत्र को जनइच्छा नहीं,
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था के रूप में देखना, शुम्पिटर के व्यापक राजनीतिक विचार इस पुस्तक के आर्थिक तर्क को पूरा करते हैं।
वे लोकतंत्र को ऐसी व्यवस्था के रूप में देखते हैं जिसमें नेता और राजनीतिक समूह मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
यह दृष्टिकोण उस आदर्शवादी धारणा से अलग है कि जनता हमेशा सुविचारित, एकीकृत और स्पष्ट जनइच्छा के आधार पर शासन करती है।
शुम्पिटर मतदाताओं की सीमित जानकारी, राजनीतिक उदासीनता और नेतृत्व द्वारा मुद्दों को गढ़ने की क्षमता पर जोर देते हैं।
इसका अर्थ लोकतंत्र को निरर्थक बताना नहीं है, बल्कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नेतृत्व की शांतिपूर्ण प्रतिस्पर्धा और सत्ता परिवर्तन की संस्थागत विधि के रूप में समझते हैं।
पूंजीवाद और समाजवाद की बहस में यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक संस्थाओं का मूल्यांकन राजनीतिक नियंत्रण और जवाबदेही से अलग नहीं किया जा सकता।
यदि राज्य का आर्थिक दायरा बढ़ता है तो निर्णयों का केंद्रीकरण बढ़ सकता है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर नए दबाव आ सकते हैं।
शुम्पिटर इस संभावना को लेकर सतर्क है, हालांकि वे किसी सरल नियतिवाद का समर्थन नहीं करते।
आज के पाठक के लिए यह हिस्सा याद दिलाता है कि बाजार और लोकतंत्र दोनों में प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता संस्थाओं पर निर्भर करती है।
विकल्पों की वास्तविक उपलब्धता, नियमों की विश्वसनीयता और संगठित शक्ति की सीमाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी औपचारिक चुनावी प्रक्रिया।
निष्कर्ष में यह पुस्तक अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय, तकनीक और राजनीतिक विचार में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
नवाचार को केवल नए उत्पादों की कहानी मानने वाले पाठक यहाँ समझ सकते हैं कि तकनीकी बदलाव पुराने कौशल, निवेश और संस्थाओं को क्यों अस्थिर करता है।
उद्यमियों और प्रबंधकों के लिए इसका लाभ यह है कि यह प्रतिस्पर्धा को तत्काल बाजार हिस्सेदारी से आगे संभावित तकनीकी और संगठनात्मक परिवर्तन के रूप में देखने की आदत देता है।
नीति निर्माताओं के लिए पुस्तक का मूल्य इस चेतावनी में है कि विकास के लाभ अपने आप सामाजिक स्वीकृति या राजनीतिक स्थिरता में नहीं बदलते।
विस्थापन, शक्ति के केंद्रीकरण और सार्वजनिक वैधता के प्रश्नों पर संस्थागत उत्तर चाहिए होते हैं।
समान विषय की अनेक पुस्तकों से इसका अंतर इसकी दोहरी दृष्टि है। शुम्पिटर एक ओर पूंजीवाद की असाधारण नवाचार क्षमता का सशक्त विश्लेषण करते हैं, दूसरी ओर उसी क्षमता से पैदा होने वाले सामाजिक परिणामों को पूंजीवाद के लिए जोखिम मानते हैं।
इसलिए यह न तो मुक्त बाजार का सरल समर्थन है, न समाजवाद का उत्सव।
इसकी भविष्यवाणी कि पूंजीवाद अनिवार्य रूप से समाजवाद को जगह देगा, इतिहास में निर्णायक रूप से सही सिद्ध नहीं हुई।
फिर भी पुस्तक का स्थायी महत्व भविष्य बताने में नहीं, सही प्रश्न उठाने में है।
यह पूछती है कि क्या कोई व्यवस्था आर्थिक रूप से सफल रहते हुए भी अपने सांस्कृतिक समर्थन, उद्यमी ऊर्जा और लोकतांत्रिक संतुलन को खो सकती है।
यही तनाव इसे आज भी गंभीर और विशिष्ट बनाता है।
यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जोसेफ ए.
शुम्पिटर,
आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं।
किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें।
फिर मिलते हैं।